जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोद नंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमोनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Giridhare Radha, Giridhare Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Kaurari Bhar, Devalari Bhar. Hare bol Nitai Gaura. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada ki jaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nasya prayesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishikim. Srimad Bhagavatam Skanda 10 Adhyay 11 Shloka Sankhya 37. Evam Rojokasam Pritim Yachanto Bala Cheshtite कलव्याख्यै स्वकालेन वत्सपालो बभूवतो एवं रजोगसां प्रीतिम् एवं रजोगसां प्रीतिम् यच्छन्तो बालचेष्टितो यच्छन्तो बालचेष्टिते यच्छन्तो बालचेष्टिते कलव्याख्यै स्वकालेन बलवाक्यै स्वकालेन मत्सपालो बभूवतुः मत्सपालो बभूवतुः एवं रजोगसां प्रीतिम् यच्छन्तो बालचेष्टितैः कलवाक्यै स्वकालेन मत्सपालो बभूतो यच्छन्तो बालचेष्टितौ
Yeah.
एवं इस प्रकार व्रज व्रजोकसाम सारे व्रजवासियों को प्रीतिम हर्ष यच्छन्तो प्रदान करते हुए बाल चेष्टित बाल लीलाओं से कलव्याख्यो मीठी तोतली बोली से स्वकालेन समयानुसार वत्सपालो बछड़ों की रखवाली करने के लिए बहु वतुहु बड़े हो गए। अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन गए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह कृष्ण और बलराम छोटे बालकों की तरह पीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए व्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे। समय आने पर वे ये बछड़े ये बछड़ों की देखभाल करने योग्य हो गए। तात्पर्य जो ही कृष्ण तथा बलराम कुछ बड़े हुए क्यों ही उन्हें बछड़े की रखवाली का काम सौंप दिया गया। यद्यपि वे समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे तो भी उन्हें बछड़े की रखवाली करनी पड़ती थी। यह शिक्षा की पद्धति थी जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेते ये उन्हें ऊंच शिक्षा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को साहित्य उच्च शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों को राज्य की रक्षा करने का प्रशिक्षण मिलता था और वैश्यों को खेती करने तथा गांवों बछड़ों की रखवाली करना सिखलाया जाता था। उन्हें झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इससे बाद में बेरोजगारी ही बढ़ती है। कृष्ण तथा बलराम ने अपने निजी आचरण से हमें शिक्षा दी। कृष्ण गायों की रखवाली करते और अपनी बांसुरी बजाते तथा बलराम अपने हाथ में हल लेकर कृषि कार्यों की देख रेख करते। उन्हें झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके बाद में बेरोजगारी ही बढ़ती है। जय कृष्ण। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन श्लाघय शिक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपत् कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाकान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचाकल्पतरूप्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్వాసాది గౌర భక్తవృంద, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. కృష్ణ బలరామ్ వీ థోడే థోడే బడే హోగే ఏవం ఇస్ శ్లోక్ మే జో పహలా శబ్ద హై ఉసే సూచిత కియా గయా హై కి కృష్ణ బలరామ్ 3 సాల్ కే హువే. జబ్ వో 3 సాల్ కే హువే తో ఏ బచ్చే కో హోష్ రహతా హై, మే కహాన్ హూ, మే కహాన్ గయా హూ, కహాన్ జా రహా హై, కౌన్ సా సమయ హై. అభీ సమయ కా ఔర్ స్థాన్ కా హోష్ 3 సాల్ తక్ ఆతా హై. 3 సాల్ కే పహలే వో ఇత్నా హోష్ నీ రహతా హై, సుబహ హువా, రాత్ హువా, యా మే ఖాయా హూ కి నహీ, నహీ ఖాయా హూ, కుచ్ ఉస్కా హోష్ నీ రహతా హై. తో ఇస్లియే ఇధర్ కహా గయా ఇస్ శ్లోక్ మే కి కృష్ణ బలరామ్ అభీ ధీరే ధీరే సే బడతే బడతే వత్సపాలౌ బభూవతుః, బభూవతుః, బభూవతుః కా అర్థ క్యా హై కి వో బడ్, వో బడే హువే. కిత్నే బడే హువే? వత్సపాలౌ, వత్సో కో యానీ బచ్చరో కో దేఖభాల్ కర్నే కి ఇన్కే అందర్ క్షమతా ఆయి. తో జైసే క్షమతా ఆయి తో ఉన్కో జ్యాదా కుచ్ ఔర్ కర్నే కి జరూరత్ నహీ తా. మాతా పితా నే కహా ఠీక్ హై, బచ్చరో కో దేఖభాల్ కర్నే జాఓ. వేసే గాయ ఔర్ బచ్చరో కో చరానే సాత్ మే లేకే నహీ జా సక్తే, పహలే గాయో కో ఛోడ్తే చరానే కే లియే దూర్, ఉస్కే బాద్ బచ్చరో కో ఛోడ్తే హై, లేకిన్ కహాన్ తక్ ఛోడ్తే హై? ఆజూ బాజూ మే, దూర్ నహీ. వేసే కృష్ణ బలరామ్ జిన్కే అభీ షిఫ్ట్ హో రహే థే కహాన్ సే? గోకుల్ సే నందగావ్ కి ఓర్, నందీశ్వర్ కే పాస్. లేకిన్ గోకుల్ ఔర్ నందీశ్వర్ కే బీచ్ మే వృందావన్, జహాన్ మేనే కహా థా చటికరా, ఉదర్ ఉన్కా టెంపరరీ స్ట్రక్చర్ బనా థా. సబ్ జితనే వే బైల్ థే, బైల్గాడీ థీ, ఉస్ సబ్కో ఏక్ అర్ధ చక్ర కే రూప్ మే ఖడా కియా, ఔర్ ఆజూ బాజూ మే కుచ్ ఘాస్ ఫూస్ థే, తో బీచ్ మే ఏసా ఏక్ ఛోటా సా సురక్షిత్ స్థాన్ బనా. తో బచ్చరో కో దేఖభాల్ కర్నే కే కహాన్ భేజ్తే థే? తో ఉసీ జో చక్ర హై ఉసీ కే అందర్, బహార్ నహీ భేజ్తే థే. ఏసా నహీ కి బచ్చరో కో జో హై థోడా దూర్ భేజా జాతా థా, నహీ. అభీ భీ వో టెంపరరీ స్ట్రక్చర్ మే హస్తే థే. దూసరీ జగహ్, దూసరీ బాతో మే చర్చా కియా జాయే, అభీ నందగావ్ గయే నహీ హై. జానే సే పహలే హీ కుచ్ ఉన్కా జో వృందావన్ కే పాస్ మే యే జో చటికరా జో పాస్ ఉదర్ హీ కృష్ణ బలరామ్ బచ్చరో కో చరానే వో లేకే గయే. లేకిన్ కుచ్ సమయ, కిత్నా సాల్ తక్, కిత్నా సమయ తక్, అలగ్ అలగ్ జగహ్ అలగ్ అలగ్ బాతో కో వర్ణన్ కియా గయా హై. కిసీ నే కహా 1 సాల్ తక్, తో కిసీ నే కహా 6 మహీనే తక్, జో భీ హై 1 సాల్ కే అంతర్గత బాత్ హై. 1 సాల్ మే కృష్ణ వృందావన్ మే భలే హీ సమృద్ధ పరివార్ మే జన్మ లియే, ఉన్కా ఏక్ జగహ్ నంద మహారాజ్ మహల్ మే రహతే థే. వేసే గోకుల్ మే దేఖేంగే ఉన్కా మహల్ హై, 84 కంబా మహల్ హై నా, వజ్రైడూయోన్ సే బనా థా. ఔర్ అభీ దేఖేంగే ఐసే ఛోటే సే కుటియో మే రహతే థే, కుజే కులా మే సో జాతే థే. తో ఇస్సే పతా లగ్తా హై కి నంద మహారాజ్ వైశ్య పరివార్ కే థే. వైశ్య పరివార్ కే హోనే కే బాద్ భీ వో ఉన్కా ముఖ్య వృత్తి థా ఖేతీ, ఔర్ దూసరా హై గోచరణ, కృషి గోరక్షా. ఔర్ కృషి గోరక్షా కే లియే వో కుచ్ భీ కర్నే కే లియే తయార్ హో జాతే థే. వేసే కృషి గోరక్షా వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజం. నంద మహారాజ్ వో ఉస్ ప్రకార్ కే వైశ్య థే జో ఉన్కా కృషి ప్రధాన్ థా, గోరక్షా ఉన్కా ప్రధాన్ థా, యే నంద మహారాజ్ కా వృత్తి థా. వేసే దేఖా జాయ్ జిసే బ్రాహ్మణో మే హో యా వైశ్యో మే భీ, ఈవన్ క్షత్రియో మే భీ, జాత్ మే దేఖేంగే అలగ్ అలగ్ శ్రేణియా హోతీ హై. ఉన్మే భీ కుచ్ ఊచే ప్రకార్ కే క్షత్రియ హోతే హై, కుచ్ నిమ్న ప్రకార్ కే క్షత్రియ హోతే హై. వేసే వైశ్యో మే భీ కుచ్ ఊచే ప్రకార్ కే వైశ్య హోతే హై, ఔర్ మధ్యమ వర్గ కే వైశ్య హోతే హై. బ్రాహ్మణో మే భీ అలగ్ అలగ్ హోతే హై, జైసే ఊచే కేటగిరీ కే బ్రాహ్మణ హోతే హై, నిమ్న కుల్ కే బ్రాహ్మణ హోతే హై. ఐసా నహీ కి కేవల్ 4 వర్గ హై, 4 ప్రకార్ కే హై. वो चार में भी बहुत वैरायटी है। ऐसे भगवान ने कहा भगवद गीता में चातुर्वर्ण्यम मय सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये चार प्रकार के वर्णन आश्रम को भगवान ने स्थापना किया। उस वर्णों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के श्रेणियां होती है। अगर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वैसे ही भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मय सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि, मैं भले उसकी कर्ता हूं, मैं उनको मैं निर्माण किया हूं, विद्य कर्तारमव्य हूं, मैं उससे परे हूं, वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं आता हूं। ये जो नंद महाराज की जो वैश्यों की कैटेगरी है, कोई ऊंचे वैश्य परिवार की कैटेगरी नहीं था उनका, निम्न स्तर के वैश्यारिक परिवार की कैटेगरी था, जो कभी एक जगह स्थित नहीं होते। जो ऊंचे प्रकार के वैश्य कैटेगरी होते हैं वो एक जगह स्थित होते हैं, अपना राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं व्यापार के में, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है या कोई ऐसा व्यापार जो राजा से संबंध रखते हैं, ऊंचे कोटि के वैश्य माने जाते हैं। जो निम्न कोटि के वैश्य हैं वो क्या करते हैं, जहां मौका मिला उधर उधर बस गए, वो निम्न कोटि के वैश्य माने जाते हैं। तो ये नंद महाराज इत्यादि निम्न कोटि के वैश्य के कैटेगरी में आते हैं। इसलिए उधर उनका ये जो गोपी जन्म जो है, भले ही गोपी जन्म वैश्य को कहा जाता है, वैश्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन गोपी या गोप उनको बोला जाता है जो कहीं एक जगह स्थित नहीं रहते, जहां गए उधर चले गए, उनको कभी ट्राइबल वैश्य कहा जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ वैश्य होते हैं बड़े समृद्ध होते हैं, राजा के सब संबंध बना करते हैं, कुछ ऐसे हैं जहां मौका मिला उधर चले जाते हैं, उनका कोई एक स्थिर स्थान नहीं रहता, तो उस कोटि के वैश्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कभी कभी वर्णन आता है कि नंद महाराज कुटिया में रहते हैं, कई वर्णन आता है नंद महाराज का महल का वर्णन आता है, कई वर्णन आता है नंद महाराज और उनके प्यारे जितने भी अन्य गोप सब लोग जो है कृष्ण, वो कुछ पेड़ों के पास में कुछ ऐसा कपड़ा बांध के कुछ रहते थे कुछ समय तक। तो कोई हिसाब किताब नहीं है, नंद महाराज महल में रहते थे या कुटिया में रहते थे, कोई कभी कभी उसका वर्णन, कभी वो महल का वर्णन है, कभी कुटिया का वर्णन है, कभी जंगल का भी वर्णन है, जंगलों में ऐसे रहते थे। तो ये उनका विशेष एक जात है। कृष्ण उधर प्रकट हुए, प्रकट होके सारा जगत को उन्होंने कहा, जब तक कोई ये गोपी के गर्भ से जन्म नहीं लेता तब तक मेरा वो प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक वो मेरा कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे लीलाओं में वो प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत विशेष बात है। जैसे हम देखते हैं कि द्विज पत्नियां, वो भी कृष्ण के शरणागत हुई थी, कृष्ण के शरण लेने के बाद द्विज पत्नियां, कृष्ण उनको स्वीकार नहीं किया, कृष्ण उनके आंखों से प्रवेश किया, उनके हृदय में प्रवेश करके गोपियां या द्विज पत्नियां उनको हृदय में आलिंगन किए, लेकिन कृष्ण को स्पर्श नहीं कर पाई द्विज पत्नियां। तो इस लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने सारे जगत को ये बताया, जब तक गोपी जन्म नहीं होता है, गोपी के गर्भ से जन्म नहीं होता, तब तक मेरी लीला में भाग नहीं ले सकते, मैं उनको स्पर्श नहीं करूंगा, वो ना मुझे मैं स्पर्श कर सकते हैं। ये जो ये परिवार है इसका विशेषता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे लीलाएं किया, ऐसे देखा जाए वर्णाश्रम धर्म बहुत अच्छा व्यवस्था है जो भगवान ने स्थापना किया। हरेक वर्ग के अनुसार उनकी उनकी प्रवृत्तियां होती है, उस प्रवृत्तियों के अनुसार उनको शिक्षण दिया जाता है। वैसे ये जो परिवार जिसके अंदर कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, उनका एक ही वृत्ति था, क्या था, गाय बछड़ों को चराना, खेती करना, बस वही वृत्ति था, वही शिक्षा है, वही करते करते उनको जो जरूरत था वो सीख लेते थे। वैसा नहीं कि वो स्कूल कॉलेज जाएंगे और जबरदस्ती पढ़ेंगे जो उनका स्वभाव के अनुसार नहीं हो। जैसे अभी हम देखते हैं कि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है उसको बाद डालेंगे इंजीनियरिंग में, जब तक तुम इंजीनियर नहीं है तुम पढ़ा लिखा नहीं है। मान लो कोई वैश्य परिवार में जन्म लिया है उसको डालेंगे तुम नौकरी करो, तो वैश्य परिवार के व्यक्ति को नौकरी में डालेंगे तो कभी खुश नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है स्वतंत्रता से धन कमाना। भले ही उसको नौकरी करके लाख रुपए महीने का मिल रहा है, बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। अगर उनको स्वतंतरता से छोड़ेंगे, उसको महीने का 5,000 मिलता है तो उससे खुश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सोचेगा मैं कुछ मेहनत करके कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ कमाया है। तो लोगों की जो प्रवृत्तियां हैं जन्मतः प्रवृत्तियां, ये खास विशेष ध्यान देने वाली बात है। भले ही हम ये कहते हैं कि जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जन्म भी महत्वपूर्ण है। अक्सर हम ये श्लोक कोट करते हैं, क्या कोट करते हैं, चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के अनुसार विभाजन होता है। सही बात है, गुण और कर्म के अनुसार ही विभाजन होता है, लेकिन फिर भी जन्मतः हर एक व्यक्ति का कुछ प्रवृत्ति होता है। वो प्रवृत्तियों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कभी कभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ये जन्म को बहुत नजरअंदाज किया जाता है। ये सही बात है, गुण और कर्म के हिसाब से व्यक्ति का वर्ण और आश्रम निर्धारित होता है, लेकिन भले ही गुण और कर्म के ऊपर आधारित हो, लेकिन जन्म भी कुछ ना कुछ उसके अंदर योगदान है। जन्म को पूर्ण तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। क्यों नकारा नहीं जा सकता है? क्योंकि उसका जन्म एक परिवार में हुआ, इसलिए क्यों? क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म उस प्रकार के, इस प्रकार की प्रवृत्तियां थी, इसकी वजह से जन्म उस परिवार में हुआ। तो भले ही ये सही बात है कि एक डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं होता है, जन्म के हिसाब से एक व्यक्ति का योग्यता को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर का पुत्र को डॉक्टर बनने का ज्यादा चांस रहता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से देखा है पिताजी कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करूंगा, शिक्षा लिया हुआ, उसके अंदर मनोभावना ऐसा रहता है। तो इससे सही बात है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं है और वैश्य का पुत्र वैश्य नहीं है, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय नहीं है, लेकिन उनके अंदर उस प्रकार की कार्य करने की प्रवृत्तियां रहती हैं। तो इसलिए ये जो वर्णाश्रम धर्म जो है वो पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे एक उदाहरण तौर पर दिया जाए, पहले जमाने में क्या हुआ करता था, कोई मान लो दर्जी है, उनके परिवार में दो भी बच्चे जन्म लिए वो दर्जी बनते थे। अभी क्या करते हैं, ये दर्जी का पेशा में ज्यादा पैसा नहीं है, ये सब क्या है, ये सब छोड़ दो, तुम बेटा तुम इंजीनियर बनना, इंजीनियर बन के तुम मैकेनिक बनना, वो करना ये करना करके उसको उधर डाल देंगे। भले ही एग्जाम या परीक्षा पास करके कुछ करके वो नौकरी प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो कार्य में उसमें कोई उसको रुचि नहीं रहता, वो कभी करना बराबर नहीं कर सकता है। क्यों? उनके जन्मतः उस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं है। वैसे मान लो कोई शुद्ध परिवार में जन्म लिया है, भले ही वो एग्जाम पास करके रिजर्वेशन है इसके करके उसको स्कूल में डाल दिया जाए टीचर के रूप में, वो क्या पढ़ाएगा बताओ? नहीं पढ़ा पाएगा। हाँ, भले ही उनको टीचर का पोस्ट दिया गया लेकिन टीचर का प्रवृत्ति नहीं, भले वो अच्छा ही पढ़ा ले लेकिन फिर भी वो कार्य से वो खुश नहीं रहेगा। परिचर्यात्मकम वो कार्य से वो खुश रह सकता है। जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और उनको अगर डाल दिया जाए बिजनेस में, वो क्या करेगा? पूरा लुटा देगा पूरा संपत्ति जो है उसका लुट जाएगा। मान लो कि बिजनेस अच्छा भी कर लेता है, फिर भी वो व्यक्ति जो है वो खुश नहीं रहता उन सब चीजों से। इसलिए जन्म और कर्म ही, कर्म चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म, गुण और कर्म के हिसाब से ये विभाजन किया गया है, लेकिन जन्मतः हर एक व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, तो उस गुण को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि जन्म को पूर्ण तरीके से नकारा जा सकता है। भले ही जन्म आधार नहीं है, लेकिन पूर्ण तरीके से जन्म के द्वारा उत्पन्न हुए गुणों को नकारना, ये आजकल की आधुनिक सभ्यता का, ये पाश्चात्य प्रवृत्तियों का, पाश्चात्य देश की प्रवृत्तियों का ये स्वभाव बन गया है, वो भी भारतीयों के मन में घुस गया है। जो कास्टिज्म जो आजकल निंदनीय माना जाता है, वो निंदनीय नहीं है, वो बराबर है। अभी देखिए, विवाह भी होता है किसी का, तो कैसे होना चाहिए? अपने कास्ट में होना चाहिए, अपने प्रवृत्तियों में होना, अपने अपने समाज में होना चाहिए, नहीं तो दूसरे समाज में होगा तो निश्चित रूप में डाइवोर्स होगा। हाँ, आजकल जितने भी प्रेम विवाह होता है, तो दूसरा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह कर लेता है, क्षत्रिय से कर लेता है, उसके वजह से पूरा असमंजस हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया है। तो पहले जमाने में देखते थे, ये हमारा जात का है तो करेंगे, तो ये जातिवाद नहीं है, ये स्वभाव है। जिसका स्वभाव जिससे मिलजुल करता है उससे साथ रहना, ये स्वभाव है। तो श्री प्रभुपाद जी एक प्रपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि देर वर मेन फॉर टेकिंग केयर ऑफ काउस, ये परिवार में जन्म लिए हैं, उनका काम है, ये उनका स्वभाव है गायों को बछड़ों को देखभाल करना। भले ही बड़े समृद्ध थे, समृद्ध होने पर भी अपने प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। समृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है कोई शूद्र बड़े समृद्ध हो, ब्राह्मण गरीब हो, लेकिन भले ही शूद्र समृद्ध हो उनका संतुष्टि उसी में होगा जब वो ब्राह्मण की सेवा करेगा। भले ही वो ब्राह्मण परिवार में गरीब भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, पैसा कमाने के लिए वो अगर शूद्र का कार्य करो कभी खुश नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं इतने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, उनके माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। इंजीनियरिंग क्या है? वो शूद्रों का कार्य है। मेडिकल क्या है? वो शूद्रों का कार्य है। लेकिन सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा शूद्र बनेगा। तो लेकिन उनको मालूम नहीं इनका कार्य है पठन पाठन यजन याजन सारा परिग्रह। समृद्धि जो है कर्मों के हिसाब से आता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? वो गुण, गुणों के आधार के अनुसार कार्य करता है तो वो खुश रहता है। आश्रम में भी या कांग्रीगेशन भी हमारे मंदिर से जुड़ते हैं, उनके गुणों के अनुसार उनको सेवा देते हैं, तो उनके गुणों के अनुसार वो सेवा करेंगे, वो खुश रहेंगे। नहीं तो वो सेवा में भी भगवान, भले ही भगवान की सेवा भी क्यों ना हो, उसे खुश नहीं रहते। अगर मान लो किसी का वैश्य की प्रवृत्ति है और उनको बोलेंगे तुम इसके अंडर में तुम नौकरी करो, वो नहीं कर पाएगा, वो खुश नहीं हो पाएगा। अगर कोई मान लो क्षत्रिय की प्रवृत्ति है, उसको बोलेंगे कि आप ब्राह्मण का कार्य करो, वो नहीं कर पाएगा। ये कर भी लेता है, कितना भी अच्छा कर लेता है, वो सुखी नहीं रह सकता। ये स्वभाव है। हमारे प्रभुपाद लिखते हैं दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का प्रणाली था। दोज वर नॉट बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिलीज वर नॉट मेंट फॉर एकेडेमिक एजुकेशन। जो लोग ब्राह्मण के परिवार में जन्म नहीं लिए होते उनको ये जो शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता, ये स्वभाव है, इट वॉज ए नेचर। जैसे कहा जाए कि हर एक व्यक्ति को गुरुकुल में डाल देते थे, खास करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। गुरुकुल में जो बेसिक शिक्षा होती है, जैसे शिक्षा व्याकरण निरुक्ति छंद इत्यादि सिखाते थे। लेकिन जैसे 17 साल होता है, तो वैश्य के जो बच्चे हैं वो गुरुकुल से निकल जाते हैं, वो स्वाभाविक तरीके से निकल जाते हैं, क्योंकि ये उनको ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, हमको जनता नहीं है। तो 16-17 साल हुआ, चलो पिताजी का बिजनेस देखभाल करो। हाँ, जैसे कभी कभी अपने कांग्रेगेशन बच्चों कहता हूँ तो माता पिता थोड़ा पढ़ लिखे तो अच्छा है, बोलो फालतू में क्यों भेजते हो, अंततः वो ग्रेजुएशन करेगा, कुछ भी करेगा, बिजनेस ही तो करने वाला है, तो आप उनको समय बर्बाद करें स्कूल भेज के। तो श्री प्रभुपाद स्पष्ट रूप में लिखते हैं ये बर्बादी है, ये जो आधुनिक प्रणाली शिक्षा में भेजना जो है वो समय की बर्बादी है। वो बिल्कुल दुखी है। मैं 2-3 लोगों को कहा उसका 10th हो गया बस अभी अपने साथ ले लो, नहीं उसको कॉलेज में डालेंगे, डिग्री मिलेगा ना, तो वो ना कॉलेज बराबर करेगा ना वो सुखी है, केवल पैसे की और समय की बर्बादी है। तो श्री प्रभुपाद सपोर्ट में बहुत क्लियर लिखते हैं, जैसे कोई क्षत्रिय है उसका 19-20 साल तक हुआ तो गुरुकुल से निकल जाता है, मतलब ये अभी बस अभी मेरा हो गया है। अभी ये सब चीजें मेरे से होने वाला नहीं है। अभी जैसे क्षत्रिय निकल जाते हैं और अपना एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य वो कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है वो गुरुकुल में रह जाते 25 साल तक रह के गुरुकुल के टीचर के असिस्टेंट बन जाते हैं, टीचर बन जाते, गुरुकुल में रह जाते हैं, विवाह भी करना होगा तो भी गुरुकुल में रहते, विवाह नहीं किया तो सन्यासी बन के भ्रमण करके प्रचार करते हैं। तो शिक्षा ऐसा नहीं कि एक एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा दिया जाता है। आजकल जो है आपको डॉक्टर बनना है तो एंट्रेंस एग्जाम दो, तो ये वो डॉक्टरी करने का काबिलियत है कि नहीं वो खाली देखा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा में, लेकिन वो डॉक्टरी का ज्ञान को संभालने का गुण है कि नहीं वो देखा नहीं जाता है। इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है, क्योंकि एक बड़ा आतंकवादियों का एक बड़ा सा ग्रुप था, वो जब उसके ऊपर हमला करके उनको परास्त किया गया, जब लोगों ने जाके देखा तो उन्हें देखा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज उन लोगों का, उधर उनका एक लैबोरेटरी है, उनका मेडिकल कॉलेज है, ये सब आतंकवादियों का है। और उधर के जो पढ़ाने वाले हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त करके आए हैं, लेकिन ये सब जितने भी वो किए किसके लिए किए हैं? आतंकवाद के लिए। यानी
भले वो बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनके पास सब व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था, सब बड़े बड़े बुद्धिमान, लेकिन उन सब के पीछे उद्देश्य क्या था? आतंकवाद को कैसे फैलाना। तो इन ऐसे लोगों को इंजीनियरिंग सिखाने का, ऐसे लोगों को डॉक्टरी सिखाने का कुछ फायदा है? मुल्क का नुकसान है। तो आजकल की जो प्रणाली है, एंट्रेंस एग्जाम से शिक्षा दे दो, किसी को भी कुछ भी शिक्षा दो, ये केवल समाज में उत्पाद बताने के लिए है। जैसे आप देख सकते हो कि जब एकलव्य आया था, किनके पास आया था? द्रोणाचार्य के पास आया था। तो द्रोणाचार्य के पास आके एकलव्य ने कहा मैं सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुमको सिखाऊंगा नहीं। तो बाद में द्रोणाचार्य का मूर्ति रख के उन्होंने, एकलव्य ने क्या सीखा? बहुत अस्त्र शस्त्र सब सीख लिया। सीखने के बाद एक दिन अर्जुन के साथ द्रोणाचार्य जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, क्या देखा? एक कुत्ता भोग रहा था, अचानक से सात दिशाओं से सात बाण आए और कुत्ते के मुंह के ऊपर बाण लग गया, मुंह बंद हो गया। अर्जुन ये चमत्कार देख के, इस प्रकार की विद्या तो मेरे पास भी नहीं है। द्रोणाचार्य से पूछा, आपने कहा कि मुझे आप सबसे बड़ा योद्धा बनाओगे, धनुष बाण चलाने की कला मुझे सिखाओगे, ये कला तो मेरे पास भी नहीं है, वो कौन है? दूर से द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य आया। द्रोणाचार्य ना, हाँ, एकलव्य आया। तो एकलव्य आया तो एकलव्य उनको प्रणाम किया। तो द्रोणाचार्य अर्जुन साथ में गए, देखा कि द्रोणाचार्य का विग्रह बना के एकलव्य ने ऐसा किया। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम कहां से सीखे? मैंने कहा आपसे ही सीखा हूं, आपका विग्रह लेके, आपका प्रेरणा लेके मैंने सीखा हूं। तो अप्रत्यक्ष बलि आप मेरे पास हाथ में नहीं हो, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरे से सीखे हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तब एकलव्य ने कहा क्या चाहिए? मैंने कहा आपके जो बाएं हाथ दाएं हाथ दाहिने हाथ का अंगूठा निकाल दो। एकलव्य ने काट के दे दिया। तब ये स्टोरी सुन के सारे जगत में क्या बोलते हैं? देखो कितना बड़ा गुरु भक्त है, कौन? एकलव्य। हाँ, पूरा जगत में यही प्रचलित है। बच्चे बच्चे स्टोरी जानते हैं, गुरु भक्ति का प्रतीक है एकलव्य। और दूसरे ओर से क्या बोलेंगे? द्रोणाचार्य कितना दोषी था, देखो। हाँ, द्रोणाचार्य ने उनको एक तो शिक्षा नहीं दिया, सबको दे रहा है, सबको समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, समभाव होना चाहिए, समभाव नहीं था उनका। दूसरा, उल्टा अपना शिष्य को बड़ौदा करने के लिए दूसरों का उन्होंने उंगली काट दिया। कितना दुष्ट है द्रोणाचार्य। लेकिन शिल वक्षणस्था को रखते हैं कि अगर इस जगत में सबसे बड़ा गुरु द्रोही अगर कुछ है तो वो है एकलव्य। क्योंकि गुरु का आज्ञा क्या था? तुमको ये शिक्षा नहीं दूंगा, मतलब तुम्हारे पास वो अधिकार नहीं है शिक्षा ग्रहण करने की। तो सबूत क्या है? इतना महान शिक्षा को किसके ऊपर प्रयोग किया? कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए किया। यही प्रमाण है। तो द्रोणाचार्य के पास ऐसी दृष्टि थी, ये पहचान है कि भले ही एकलव्य ये शिक्षा सीख सकता है, लेकिन उस शिक्षा को संभालने के गुण नहीं है, उनके पास वो गुण नहीं है। उल्टा अर्जुन और पांडव, जब दुर्योधन, जिन्होंने उनको राज्य से भगा दिया, उनको चीटिंग किया, सब कुछ करने के बाद भी क्या हुआ? जब दुर्योधन को गंधर्वों ने अरेस्ट कर दिया था, तब यही पांडव ने क्या किया? अर्जुन ने क्या किया? उनको बचाया। तो ये जो शिक्षा हम प्रदान प्राप्त करते हैं, योग्यता जो है शिक्षा को ग्रहण करने की, समझने की क्षमता है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या उस शिक्षा को संभालने की क्षमता है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे एक अमीर परिवार का कोई व्यक्ति है, माता पिता बहुत अमीर है, लेकिन बच्चे को हाथ में पैसा नहीं देते। अमीर है तो देना चाहिए, क्यों नहीं देते? क्योंकि वो माता पिता, बुद्धिमान माता पिता को मालूम है ये पैसा संभालने की शक्ति सामर्थ्य नहीं उसके पास। तो उसी प्रकार कोई भी शिक्षा, कोई भी योग्यता जो है, वो योग्यता उस शिक्षा को प्राप्त करने की है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस शिक्षा को प्राप्त किया, शिक्षा को संभालने की क्षमता है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। तो इधर श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि ब्राह्मणस वर ट्रेन्ड इन एकेडमिक एजुकेशन, क्षत्रियस वर ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ स्टेज, एंड वैश्यस लर्न्ड हाउ टू कल्टीवेट लैंड एंड टेक केयर ऑफ काउस। देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाके समय बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्कूल, जितना व्यक्ति जाता है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता है, वो बाहर आके वो क्या करेगा? वो केवल बेरोजगारी का कारण बनेगा। अगर स्कूल कॉलेज ना हो ना, या स्कूल कॉलेज की प्रणाली आजकल जो चल रही है, यही हमारे देश की समस्या है। लोग बोलते हैं बेरोजगारी की समस्या है। क्यों है बेरोजगारी की समस्या? क्योंकि आप जैसे ग्रेजुएट होता है कोई स्कूल और कॉलेज से पास होता है, उसके पास सर्टिफिकेट आ जाता है। तो क्या सर्टिफिकेट है? हो तुम निकम में हो, तुम कोई काम के नहीं हो, उसका सर्टिफिकेट है। खुद से कुछ नहीं कर सकता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। बताइए, अनपढ़ व्यक्ति रास्ते में पान का दुकान खोल के बैठा है वो अच्छा है, या पढ़ा लिखा होने के बाद सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, दे दो बाबा नौकरी, दे दो बाबा नौकरी, दे दो बाबा, क्या जरूरत है? उससे अच्छा है कि पान का दुकान खोलो, आराम से बैठो, खलिंगन का दुकान खोलो, बैठो, गन्ने का जूस खोलो, खोलो आराम से जी सको, जियोगे। मैं एक व्यक्ति को सुनाया, आप पैसे के इतना खर्चा करते हो, अगर आप सच में अग्रवाल है, आप सच में एक वैश्य है, आप सोचो जरा, बच्चे को कहां भेज रहे हो? आप स्कूल में भेज रहे हो। अभी एक एक स्कूल में 10,000 रुपए का फीस है, और भी जितना भी खर्चा होता है उसको तथाकथित पढ़ाई कराने के लिए, उसको आप ही से बैंक में जमा करो, 5 साल के या 3 साल से डाल देते ना। हाँ, आप घर में बच्चे को देखभाल करो, माता पिता को जो भी आपको जो आता है वो सिखा दे रहा हूं बस उनको, तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन आज से जितना पैसा उसकी पढ़ाई में खर्चा करते हो, खाली पैसा बैंक में डालते जाओ, जब तक वो 25 साल का होगा ना, तब तक बिना कुछ काम किए खा सकता है वो ब्याज से, बिना कुछ काम करके खा सकता है। होता है ना कुछ रिकरिंग डिपॉजिट, हर साल हर महीना 10-10 साल 20 साल के लिए दो तो आपको कुछ हर महीना इतना मिलेगा, कुछ है ऐसा, कुछ स्कीम्स है। तो उस वो भी ये बुद्धिमता है। प्रभुपाद जी एक एक शब्द लिखते हैं, इसके पीछे बहुत गहरा तात्पर्य है। केवल समय की बर्बादी है और शक्ति की बर्बादी है और लोगों को दिमाग खराब करने की बात है। तो कुछ लोग जो बोलते हैं, प्रभु जी अगर हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे? घर का काम सिखाओ उनको, बोलो कम से कम सब्जी खरीद के लाओ, तो गणित सीख लेगा, अपने आप सीख लेगा। वो एक इंजीनियर बन गया है, लेकिन जब सब्जी वाला उसको धोखा देके बेचता है, क्या फायदा है ऐसा मैथमेटिक्स का? तो यही मैंने कहा, वो आपका मैथमेटिक्स प्रोफेसर है लेकिन सब्जी वाला उसको धोखा दे देता है, तो चेंज में कुछ तो कुछ करके गड़बड़ करके भेज देता है, तो क्या फायदा है सब चीजों का? तो घर में रह के हर चीज सीखा जा सकता है, खास करके शूद्रों को, वैश्यों को, और क्षत्रियों को थोड़ा बहुत नीति शास्त्र गुरुकुल में सीख लेंगे बहुत अच्छा है। शास्त्र का विद्वान पंडित बनना है तो ब्राह्मणों के गुरुकुल में जाना है और गुरुकुल में रहना है। ऐसा नहीं कि गुरुकुल से पास होके वो बाप नौकरी क्लर्क बनेगा। जैसे कोई अभी दक्षिण भारत में एक ऐसे आप श्रृंगेरी मठ जानते हो, और गुरुकुल है, तो मैं पूछा क्या करते हो, मतलब गुरुकुल से पास होंगे वो डिग्री प्राप्त होगा, उसको होने के बाद क्या करेंगे? मतलब अभी रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई किया है। मतलब क्या फायदा तुम, मतलब ब्राह्मण जन्म लेने का क्या फायदा, इतना आप गुरुकुल में सब शास्त्र पढ़ने का क्या फायदा, वो वेदांत सीखा है, आगमन शास्त्र सीखा है, और क्या करेगा? रेलवे की टिकट काउंटर में टिकट बेचेगा, क्या व्हाट इज द यूज ऑफ इट, क्या फायदा है? तो श्री प्रभुपाद जी जब ऐसे तात्पर्य लिखते हैं, ये समझना चाहिए कि उनके यहाँ उनके दिल में बहुत दुख होता है सब चीज देख के। तो ये हमारी वैदिक सभ्यता है, ठीक है। कृष्ण बलराम तो भले ही दिव्य हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया किस प्रकार, भले ही हम भले अमीर परिवार के क्यों ना हो, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? गाय बछड़े देखभाल करना। ऐसे कृष्ण के बहुत सारे लीलाएं, बछड़ों की लीला, बछड़ों के साथ जो चलाने की लीला बहुत सारे हैं। बछड़ों की लीला चलता है घासुर का वध कर, अभी असुरों का वध करना शुरू कर दिया। अभी ये क्या हुआ, एक जगह लिखते हैं कृष्ण, आगे की श्लोकों में आता है, बछड़ों को चराते चराते कृष्ण थोड़ा सा दूर चले गए थे, यहां बाउंड्री बनाए थे ना उससे थोड़ा दूर चले गए थे, तो उसके बाद उधर भी बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मारा, जो नजदीक आए थे, लेकिन गोकुलवासियों को उधर के जो नंद मारे थे उनको लोग मालूम नहीं पड़ रहा था। तो इसी अध्याय में हमको बकासुर का वध करने का जो लीला है वो सब हमको श्रवण करने को मिलता है। यानी कृष्ण के पास आके असुर मारने आए थे, लेकिन अभी कृष्ण जाके असुरों को मार रहे हैं बाहर जाके, वो बछड़ों का लीला से, बछड़ों को चराने की लीला से शुरू होता है। आज थोड़ा सा गौर गदाधर पंडित का विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गदाधर पंडित कृष्ण के या चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। हम जो पंचतत्व प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गदाधर गदाधर चैतन्य महाप्रभु इतने प्रिय हैं। जब चैतन्य महाप्रभु का नाम ही है गदाधर प्राण प्राणा, जिनको गदाधर को प्राण के समान देखते हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, गदाधर प्राण। तो गदाधर पंडित के विषय में बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हम ज्यादा थोड़ा सा तत्व के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। हु इज गदाधर? वैसे लीलाएं अनंत है, अनेकों लीलाएं हैं गदाधर पंडित का चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से अलग हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने से एक साल बाद की बात है जब गदाधर पंडित का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद से जैसे छाया होती है एक व्यक्ति का, उसी प्रकार गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु दोनों मिलजुल के रहते थे। महाप्रभु का छाया है गदाधर पंडित, जहां महाप्रभु है उधर गदाधर पंडित है। लेकिन बात यह है कि जैसे हमेशा होता है जब कोई बहुत होशियार थोड़ा सा नटखट बच्चा रहता है ना, वो नटखट पंडित दिखाएगा किसके ऊपर? उसके साथ में एक लल्लू घूमता रहेगा। स्कूल कॉलेज में देखे रहेंगे, एक बहुत नटखट थोड़ा लीडर टाइप बच्चा रहेगा, उसके साथ में एक रहेगा, हमेशा एक लल्लू रहेगा जो उनकी सारी बातें सुन के हाँ हाँ बोलता है, गदाधर वो टाइप। भले ही उनको कितने भी डांटे कि जो ध्यान कीजिए कुछ भी करे दोनों साथ में रहेंगे, है कि नहीं? तो ये गदाधर इसलिए चैतन्य महाप्रभु को अति प्रसन्न किया, क्योंकि बाकी लोग चैतन्य महाप्रभु को देख के ये पांडित्य करेगा वो करेगा वो बोलेगा कर देख के भाग जाते थे, लेकिन गदाधर पंडित एकदम बिल्कुल नम्र तरीके से चैतन्य महाप्रभु के साथ में शांति से रहते थे। महाप्रभु गदाधर पंडित पूछते थे इसका अर्थ बताओ, गदाधर बोलते थे ये है, महाप्रभु बोलते नहीं गलत है ये है, गदाधर बोलते हाँ ये सही है। जब महाप्रभु बोलते नहीं ये भी गलत है, तो ऐसा गदाधर को परेशान कर देते थे, लेकिन गदाधर पंडित जो है कभी एक बार भी एक क्षण भी महापुरुष छोड़े। ऐसा क्यों है? उसके पीछे बहुत गहरा तत्व है। तत्व ये है कि गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधारानी का वो इनकर्नेशन, अंश अवतार माना जाता है, कई अवतार भी माना जाता है, राधारानी ही माना जाता है गदाधर पंडित। तो प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा और कृष्ण का मिलन स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु, तो राधारानी तो चैतन्य महाप्रभु के पास में है, तो ये गदाधर पंडित कहां से आ गए फिर? राधारानी का अवतार है तो क्या दो राधा है क्या, या दो राधारानी है क्या? तब इसके लिए थोड़ा सा विचार करना होगा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ने क्या किया? राधारानी का भाव को स्वीकार किया और उनका अंग कांति को स्वीकार किया। तो राधारानी का जो भाव है, क्या भाव है? हमेशा मान भाव रहता है, कृष्ण को हमेशा अधीन रखने का उनका प्रयास भाव रहता है। उनको वाम भाव कहा जाता है, लेफ्टिस्ट ग्रुप, यानी जो कहते हैं कौन है? कृष्ण मेरे है, ये कहने वाले जो राधारानी है। तो राधारानी के अंदर हमेशा ये भाव रहता है कि मैं कृष्ण मेरे है और किसी के नहीं, इस प्रकार का थोड़ा सा क्रोध रहना, थोड़ा ऐसा मान रहना, ये सब भावना राधारानी के अंदर रहता है। तो चैतन्य महाकृष्ण जो है वो क्या किया? राधारानी का ये जो वाम भाव जो है, इस भाव को स्वीकार किया था, उसको ले लिया, और बचा क्या है? बचा है वो कृष्ण विरह में जो शांत रह के कृष्ण कब आएंगे, एकदम बिल्कुल सीधा सीधा जो भाव है वो बच गया था। तो ऐसा कहा जाता है जो श्रीमती राधारानी के हृदय में कृष्ण जी ये वाव भाव को चुरा के चैतन्य महाप्रभु रूप में बनने के बाद जो राधारानी का जो स्वभाव बचा हुआ था, उसका अवतार है गदाधर पंडित। इसलिए गदाधर पंडित जो है रुक्मिणी का स्वभाव को प्रकाशित किया। रुक्मिणी कैसे थी? शांत स्वरूपिणी है रुक्मिणी। वैसे दूसरी ओर सत्यभामा कौन है? बिल्कुल वो बहुत क्रोधित हो जाती है, कुछ भी सहन नहीं कर सकते, तुरंत क्रोध आता है, उनका क्रोध जो है अपने नाक के ऊपर रहता है। इससे कृष्ण कभी सत्यभामा के पास जाने में थोड़ा डर लगता था, और इनका इनका इच्छा पूरा करने के लिए सब प्रयास कर लेते थे, लेकिन रुक्मिणी को कैसा परिहास करते हैं। तो वो जो भाव है, जो रुक्मिणी का जो भाव है, उसी को प्रकाशित किया गदाधर पंडित ने, जो राधारानी का वो भाव कृष्ण तो बहुत बड़े हैं, मैं तो कौन हूं, मैं तो ग्वालिन हूं, तो वो तो मथुरा में बहुत सारे लोग हैं, द्वारका में बहुत सारे लोग हैं उनको सेवा करने के लिए, हमको भी कौन पूछने वाले हैं। तो इस प्रकार की शांत नम्र स्वभाव को प्रकाशित करने वाले जो राधारानी का स्वरूप है उसके अवतार है गदाधर पंडित। इसलिए गदाधर पंडित हमेशा शांत स्वरूप स्वाम हमेशा रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, गदाधर पंडित के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु वो सोच रहे थे कि अभी क्या करें, चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास देने की बात है। जब गदाधर पंडित को ये बात मालूम पड़ा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जाओ मैं रहूंगा, तो मैं आपसे बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ में आऊंगा। तो गदाधर पंडित ऐसे एक भक्त है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ठीक है, उन्होंने सोचा कि अगर मेरे साथ में कोई नहीं आएगा, नित्यानंद प्रभु नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन गदाधर पंडित को मैं साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं संन्यास ले सकता हूं, सबसे विरक्त हो सकता हूं सबसे, लेकिन गदाधर से नहीं हो सकता, गदाधर से कैसे हो सकता हूं। गदाधर कौन है? श्रीमती राधारानी स्वयं है। श्रीमती राधारानी स्वयं होने के नाते कैसे वो वो वो, वो संन्यास देंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं? वो लक्ष्मी से ले सकते हैं। लक्ष्मी क्योंकि विवाहित है, विवाहित है कृष्ण, विवाहित व्यक्ति से संन्यास ले सकते हैं। संन्यास मतलब जिसके साथ विवाह, वो उनसे ले सकते हो। राधारानी के कृष्ण के साथ तो विवाह नहीं हुआ है, तो संन्यास कैसे लेंगे? तो अस्तित्व में इधर लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया का ये विभाग, ये सेवा है। लक्ष्मी प्रिया देवी, विष्णु प्रिया देवी जो है वो प्रकट हुई राधा कृष्ण का सेवा करने के लिए। कैसे? चैतन्य महाप्रभु का संन्यास, क्योंकि राधारानी से संन्यास हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इसलिए राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के राधा कृष्ण मिलन स्वरूप है। मिलन स्वरूप होने के बाद जो बचा हुआ राधा तत्व है वो गदाधर पंडित के रूप में आए, इसलिए वही गदाधर पंडित जो हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ 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 ले गए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा गदाधर पंडित को कि जगन्नाथपुरी में क्षेत्र संन्यास देना, तो गदाधर पंडित जो है वो संन्यास लिए। तो इसके पीछे भी गहरा तत्व है। चैतन्य महाप्रभु का ये जो गदाधर पंडित का क्षेत्र संन्यास करते क्या है, क्षेत्र संन्यास करते हैं कि इधर ही रह के मैं सेवा करूं। अभी कहां किसका सेवा करना है? गोपीनाथ का सेवा करना है। ये गोपीनाथ का विग्रह जो है बड़ा अद्भुत विग्रह है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गदाधर पंडित को तुम इस विग्रह का सेवा करो। ये विग्रह जो है वो रासस्थली का विग्रह है। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थ कर्षम वेण सुनेर गोपीर गोपीनाथ श्रेष्ठ। तो कृष्ण जो है वो गोपीनाथ का विग्रह में उधर है, और गदाधर पंडित बहरी के रूप में उन्होंने कहा कि मैंने संन्यास ले लिया है। लेकिन अस्तित्व में गदाधर पंडित ने सारे गौड़ीय वैष्णव को एक स्टैंडर्ड दिखाया। संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ यह है कि राधा कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण का सेवा करना ही यही संन्यास है। तो क्षेत्र संन्यास लेके गोपीनाथ का सेवा कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तो तीन आदेश दिया, और क्या करो, रोज भागवत पढ़ो। जब गदाधर पंडित भागवतम पढ़ते थे उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ता था, ऐसे आंखों में आंसू निकल पड़ता था। एक लाइन पढ़ेंगे आंखों में आंसू आ गया तो क्या और का दिखता नहीं है। तो यही चीज को स्मरण करते करते वो पूरा बुक जो है भीग जाता था। ऐसा हुआ चैतन्य महापुरुष स्वप्न में आके उन्होंने कहा कि रघुनाथ दास गोपाल भट्ट गोस्वामी गदाधर पंडित के पास जाके तुम दीक्षा लेना भागवत सुनना। जब वो आए उनको गदाधर पंडित ने कहा मैं तो भागवत की शिक्षा दूंगा, लेकिन क्या हुआ कि भागवत तो गीला हो गया पूरा, मैं कहां से शिक्षा दूंगा, मैं आपको कहां से गीला हूं, तुम जाओ बंगाल में जाके नया भागवत लेके आओ। जब बंगाल गए गोपाल भट्ट गोस्वामी उधर से जब नया भागवत लेके आए तब तक गदाधर अप्रकट हो गए। तो गदाधर पंडित अप्रकट हुए तो गगनाथ दास गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने अभी कहा क्या करूं क्या करूं। तब उनको आदेश मिला जाओ जाके जीव गोस्वामी पास से सॉरी क्या बोल रहा हूं किससे मैं जानते नहीं। तो उधर जाके वृंदावन जाके आप दीक्षा लो। तो ये जो प्रसंग है गदाधर पंडित का चैतन्य महाप्रभु के साथ लीलाओं में एक विशेष लीला आती है, वो है एक बार ऐसा हुआ मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित सोचे चलो जाके पुंडरीक विद्यालय से मिलते हैं। मैं सुना पुंडरीक विद्यालय महान वैष्णव है, जब गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि दोनों सॉरी मुकुंदर दोनों साथ पुंडरीक विद्यानिधि के साथ में गए तो उधर पुंडरीक विद्यानिधि क्या कर रहे थे, एक बड़े सुंदर बिस्तर पर लेटे हुए थे, सोने का एक थाली कोई लेके आए और पुंडरीक विद्यानिधि पान चबा रहे थे और कोई उनको बाल सवा रहा था, सुगंधित तेल लगा हुआ था, कोई चावल उठा रहा था। तो इतना ऐश और आराम से पुंडरीक विद्यानिधि अपना जीवन यापन कर रहे थे तो गदाधर पंडित सोचने लगे, अरे ऐसा कैसे, ये तो महान वैष्णव, मैंने सुना है महान वैष्णव है या नहीं, तो वैष्णव को तो वैराग्य होना चाहिए, ये इतना सारा सुख और सुविधा में कैसे है। तो मुकुंदन को मालूम पड़ा कि गदाधर पंडित के मन में इस प्रकार के विचार चल रहा है, तो तुरंत क्या किए, एक भागवत से श्लोक उच्चारण किए, भगवान की जो दिव्य करुणा है उसको व्यक्त करने वाला श्लोक है, ओ बकीयम सनकाल पुतम। जैसे श्लोक को उच्चारण किए, किस प्रकार पूतना मारने के लिए आई कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने क्या किया पूतना को, उन्हें मातृ का स्थान प्रदान किया। जैसे ये श्लोक को उच्चारण किया, उच्चारण करते ही क्या हुआ, पुंडरीक विद्यानिधि सुन के एकदम बिल्कुल भाव विभोर हो गए, लोटपोट करने लगे, पूरा उधर उधर सब तहस नहस हो गया, उनके अंदर सारे प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। तब गदाधर पंडित को मालूम पड़ा कि ये साधारण नहीं है, तब वो सोच रहे थे कि मैंने इतने महान वैष्णव के प्रति अपराध किया है, तो इन अपराध से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना होगा, उनसे दीक्षा लेना होगा। तब महाप्रभु के पास जाकर उन्होंने कहा कि मैंने अपराध किया है पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति, मैं ये सोच रहा हूं कि उनसे दीक्षा लूं तो अपराध का भंग हो जाएगा, अपराध नाश हो जाएगा। तब चैतन्य महाप्रभु के पास में गए और जैसे उन्होंने पूछा, महाप्रभु ने कहा कि बहुत अच्छा है, जाओ दीक्षा लो। तो पुंडरीक विद्यानिधि के पास आके दीक्षा लिए और खास करके गौर गदाधर, वैसे हम लोग गौर नेता विग्रह का सेवा करते हैं, गौर गदाधर, ये गौर गदाधर का जो विग्रह है भक्तिनाथ ठाकुर ने उन्होंने प्रार्थना किया, उनको प्रिय विग्रह थे गौर गदाधर। गौर गदाधर के विषय में भक्तिनाथ ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, वो है भजत गोद्रुम कारण कुंज विदम स्मर गौर गदाधर केली कलम भव गौर गदाधर पक्ष चरम शुणु गौर गदाधर चारु कतम भज गौर गदाधर भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। एक बहुत सुंदर है गोद्रुम कानन कुंज विदुम, ये एक भजन है भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है, जिसके अंदर गौर गदाधर के महिमा का वर्णन किए। तो गौर गदाधर का पूजा क्या है या उनकी उपासना विधि क्या है, कि राग मार्ग में गौर गदाधर की उपासना किया जाता है। जब हम निष्ठा से बढ़कर रुचि आसक्ति इत्यादि भावों को तक पहुंचेंगे, तब गौर गदाधर चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, और गदाधर श्रीमती राधारानी है, उन दोनों के बीच में जो लीलाएं हैं उनको हम स्मरण कर सकते हैं, उसके हिसाब से पूजा कर सकते हैं। साधना के स्तर में हम एक गौर निताय का सेवा करेंगे, तो गौर निताय जो है साधकों के लिए है, और धीरे धीरे से हमारी साधना जब बढ़ती जाएगी तब गौर गदाधर का जो खेली है वो लीलाएं हैं हम उनको आस्वादन कर सकते हैं। बहुत गहरा तत्व है गौर गदाधर, किस प्रकार कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को गदाधर पंडित कॉन्जुगल, कॉन्जुगल मतलब माधुर्य रस में कैसे देखते हैं, इसका भी विचार गौड़ी धारा में अलग अलग जगह किया गया है। तो वैसे गदाधर पंडित का अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए तत्पर हुए, सब लोगों लेके वृंदावन जा रहे थे, गदाधर पंडित जी साथ में पहुंच गए। महाप्रभु ने, तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम क्षेत्र सन्यासी हो, तुम जल्दी जाओ जाके क्षेत्र सन्यास दो, गोपीनाथ का विग्रह का सेवा करो। तो गदाधर पंडित ने कहा, आप ही मेरे लिए गोपीनाथ हो। तब महाप्रभु अंदर से बहुत खुश हो गए, लेकिन बाहर से उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा है तुम इधर से चले जाओ, तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। डांटने लगे, गदाधर पंडित बहुत दुखी होकर चले गए। जाने के बाद ऐसा हुआ कि जिस दिन महाप्रभु जाने वाले थे वृंदावन का, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो महाप्रभु बोलने लगे, मैंने गदाधर को बहुत दुखी किया ना, इसलिए वैसे भगवान ने ऐसा किया मेरे साथ। तो इस प्रकार महाप्रभु और गदाधर पंडित के बीच में अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। तो ऐसा आज के दिन हम ये समझना चाहिए, गौर गदाधर का प्राकट्य हुआ, गदाधर पंडित का प्राकट्य हुआ अमावस्या के दिन, और उनका प्रकट भी अमावस्या के दिन हुआ। तो ये बताने के लिए कि राधा कृष्ण का प्रकट अष्टमी के दिन होता है। अमावस्या जो है जिस दिन कोई चंद्रमा नहीं रहता है, अमावस्या चंद्रमा नहीं रहता है, यानी उसे शब्दों में जो उसे राधा रानी किस प्रकार कृष्ण के विरह में दुआया, ऐसा कभी उनको महसूस होता है कृष्ण मेरे जीवन से चले गए, कृष्ण चंद्र जब चले जाते हैं उनके जीवन में, जिस प्रकार राधा रानी अनुभव करती हैं, उन भावनाओं को लेकर गदाधर पंडित अमावस्या के दिन प्रकट हुए, ऐसे गुरुआचार्यों का कहना है। तो गदाधर पंडित की जय। हरे कृष्ण।